समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सब्र, धैर्य, पेशेंस वो घटक हैं जो इंसान को बाकी सजीवों से अलग करता है, लेकिन यही वो तत्व है जिसकी इंसान में शायद सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, क्योंकि इंसान फितरत से ही बेसब्रा है। क्यों नहीं हम ये देखते कि एक बीज को बोने के बाद उसका पौधा बनने, फिर पेड़ बनने, फिर उस पर पत्तियां, फूल और फल आने में वक्त लगता है। एक बीज बोने के बाद कई बार हफ्तों, दिनों और सालों में हमें उसका फल मिलना शुरू होता है। तुरंत ही तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाते ना, फिर भी उसको फलने फूलने का वक्त देते हैं, उसकी जड़ों में खाद और पानी डालते हैं, उसकी भरपूर देखभाल करते हैं। तो बस यहीं से हमें ये सीख हासिल कर लेनी चाहिए कि हम अपने आने वाले जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हर पल, हर दिन, हर वक्त कोशिश करते रहेंगे। यकीन मानिए, इन कोशिशों का फल एक दिन जरूर मिलता है। बस जरूरत है तो सिर्फ सब्र की, धैर्य की, पेशेंस की। इसी सोच से आगाज करते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरे साथ ही सायरा मुज्तबा। सायरा, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक है नई। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड नईम ने हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सब्र और धैर्य के ऊपर, बट
जो हमारे अंदर होता ही नहीं।
एब्सोल्युटली। एंड वो बिहार से हरिवंश राय बच्चन की थी ना कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त गुजरा पता नहीं चला। तो आई थिंक हर कोई इन दिस रैट रेस, एवरीबडी इज सो मैड एंड वी डोंट इवन हैव टाइम टू स्टेयर एट यू नो नेचर एंड एवरीथिंग अराउंड।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम जितना जितना तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये धैर्य, ये पेशेंस हमारे साथ छोड़ता चला जा रहा है। हर छोटी छोटी चीज में भी हम बहुत बेसब्रे हो जाते हैं।
आई थिंक नईम, अ लॉट इज प्रॉब्ली क्रेडिटेड टू द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। आप मसलन छोटी सी बात है, हर चीज में आप सोशल मीडिया पे देखिए शॉर्ट्स निकल आए हैं, रील्स निकल आए, तो अटेंशन स्पैन इंसान का कितना कम हो गया। एंड दैट हैज अ बेयरिंग ऑन द पर्सनालिटी आल्सो दैट वी वांट एवरीथिंग टू बी क्विक।
हाँ, अब आप ये देखिए ना, एक जमाना हुआ करता था कि फिल्म की जो लंबाई हुआ करती थी वो तीन घंटे, मतलब फिक्स थी कि तीन घंटे की तो होगी। उसमें भी कुछ फिल्में ऐसी आ गई, मेरा नाम जोकर टाइप की, जो पांच घंटे की भी हो गई। अब कहाँ, अब डेढ़ घंटे, दो घंटे से ज्यादा की फिल्म नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास वक्त ही नहीं होता देखने का। बेसब्र है हम।
आई थिंक अ वेरी वेरी की टू लिव यू कैन से कंटेंटेड लाइफ इज ऑल्सो टू स्लो डाउन इन लाइफ, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी दौड़ेंगे तो उतनी जल्दी थकेंगे भी।
बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि आज के दौर में हमें बहुत कुछ करना है और उसके लिए हम दौड़ते भागते रहते हैं, हमारा सब्र हमारा साथ छोड़ जाता है उसके बावजूद। कहना मेरा यही है, सायरा का भी यही है और आपका खुद का भी मानना यही है दोस्तों, कि धैर्य हमारा साथ ना छोड़े ताकि हम सही वक्त पे सही फैसले लेकर के सही चीजों के साथ आगे बढ़े और जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बना सकें।
यस, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज शो वेयर वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट अर्ली इन द मॉर्निंग, योर परफेक्ट डोज यू कैन से टू द एंटायर डे वेयर वी ब्रिंग द लेटेस्ट हेडलाइंस। सो क्यों ना हेडलाइंस से शुरुआत की जाए।
आप शुरू कीजिए आज।
Star campaigners of different political parties are using all their might to woo the voters for next phase of elections. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi will campaign in Uttar Pradesh for the next 2 days. He will embark on an aggressive campaign in the state today and will be addressing back-to-back rallies for 2 days. He'll be holding public gatherings in Jaunpur, Bhadohi, Pratapgarh and Azamgarh today. These rallies are being held in the constituencies which will go to polls in the fifth and sixth phase. Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra will campaign for his brother Rahul Gandhi in Rai Bareilly constituency, while Deputy Chief Minister of Karnataka and Senior Congress Leader D.K. Shivakumar will also hold a press conference in Lucknow. Meanwhile, Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal reached state capital Lucknow yesterday night. He will hold a press conference at Samajwadi Party's office today.
रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज में एक रैली में कहा कि एनडीए सरकार देश के गरीब लोगों की चिंता करती है, इसीलिए आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कल बांदा के अतरा क्षेत्र में एक जनसभा में भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि देश के लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हो गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बलरामपुर जिले के गैंसारी में एक रैली में कहा कि भाजपा पूंजीवादियों के लिए काम कर रही है।
And let's we have some more news. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah reiterated that Pakistan occupied Kashmir, POK, is part of India, and said that India has a right over it. In an interview with a news agency yesterday, Mr. Shah said that Pakistan occupied Kashmir is India's because the entire Kashmir had merged with the Union of India. Speaking on the protests that have erupted in POK, Mr. Shah said there is mismanagement in POK. When asked about the AAP chief's claims that he would not need to go back to jail if enough votes were cast in the party's favour, the Home Minister said he believed this is clear contempt of the Supreme Court.
भारत का माल और सेवा का कुल निर्यात इस साल अप्रैल में 64.56 अरब डॉलर होने का अनुमान है। पिछले साल इसी अवधि में ये 60.40 अरब डॉलर था। वार्षिक आंकड़ों के आधार पर 6.88% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में देश का व्यापारिक निर्यात 1.08% से बढ़कर 34.99 अरब डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल 2023 में ये 34.62 अरब डॉलर था।
More than 75% candidates participated on the first day of the Common University Entrance Test, CUET UG 2024 examination held yesterday. As per the National Testing Agency, the exam was conducted smoothly at all locations in the country and abroad. A total of 11.4 lakh candidates were scheduled to take the exam at 2,157 centres in 379 cities on day one of the examination this year. Earlier, the NTA said that CUET UG scheduled for 15th of May has been postponed for Delhi centres due to unavoidable reasons, which will now be held on the 29th of May.
मौसम विभाग ने आज से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी शुरू होने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पंजाब और दक्षिण हरियाणा में भीषण गर्मी रहेगी। अगले दो दिन में गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र और कच्छ में, शनिवार और रविवार को दिल्ली, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी यही स्थिति रहेगी।
India's biggest skill competition, the India Skills 2024, started yesterday in New Delhi. More than 900 students from 30 states and union territories will showcase their skills in 61 different areas, from traditional crafts to latest technologies. Skill Development Secretary Atul Kumar Tiwari, who inaugurated the opening ceremony, called it a win-win situation for both the youth as well as industries.
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कल भुवनेश्वर में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। 26 वर्षीय नीरज चोपड़ा को प्रतियोगिता के आरंभिक दौर में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि तीन राउंड के बाद वो दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने चौथे राउंड में 82.27 मीटर दूरी पर भाला फेंका और प्रतियोगिता में बढ़त बना ली। नीरज चोपड़ा ने 2021 में देश में आयोजित इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और 87.80 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता और 2022 में डायमंड लीग चैंपियन का खिताब हासिल किया, 2023 में विश्व चैंपियन बने और चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया।
एंड आई हैव सम इंटरनेशनल न्यूज। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कंग्रेचुलेटेड लॉरेंस वॉन्ग ऑन अज्यूमिंग ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, मिस्टर मोदी सेड दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद मिस्टर वॉन्ग टू फर्दर एडवांस इंडिया सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Prime Minister of Slovakia Robert Fico was shot in an assassination attempt when leaving a government meeting yesterday. Minister of Interior Mateusz Suta-Jastok said that the incident was an attack on the state itself. He said the perpetrator of the attack shot 5 times and that the Prime Minister was in a critical condition. Officials later said that Fico is no longer in a life-threatening condition. And in IPL cricket, Punjab Kings beat Rajasthan Royals by 5 wickets at the Barsapara Cricket Stadium in Guwahati last night. Opting to bat first, Rajasthan Royals posted a mere 144 for 9 in stipulated 20 overs. Today, Sunrisers Hyderabad will lock horns with Gujarat Titans at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium in Hyderabad. Kolkata Knight Riders lead the table with 19 points, while Mumbai Indians are at the bottom.
और अब हम आ जाते हैं वापस सिर्फ अपने ही देश की खबरों के बारे में, उसमें भी महानगरों की जो खबरें हैं उनके बारे में बात करते हैं। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से आपके पास जो खबरें हैं, सायरा, वहां से शुरुआत करते हैं।
यस नईम, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। T.G. Sitaram, chairman of the All India Council for Technical Education, has stated that the national education policy will combine disciplines and that its four-year degree model will make Indian students globally competitive and as competent as foreign university students. Speaking at a roundtable hosted by the Education Promotion Society of India in Chennai, he stated that universities have been urged to make their financials, infrastructure, courses, faculty and other information available to the public. The advisor to the Chancellor of Vellore Institute of Technology stated that the new education policy was now in a logarithmic phase. The Indian Coast Guard performed a three-day regional pollution response drill. It consisted of a simulated shoreline cleanup by Greater Chennai Corporation in collaboration with the State Disaster Management Authority and other state agencies. The exercise was part of an annual training program, including the Coast Guard, ports, oil handling agencies, the State Disaster Management Authority, the Tamil Nadu Pollution Control Board, and Greater Chennai Corporation. Moving on to Bengaluru. The Bengaluru Water Supply and Sanitary Board, BWSSB, Chairman Dr. Ram Prasad Manohar informed that the fifth phase of Kaveri pipeline work is almost completed and 110 villages around Bengaluru city will benefit from it. He further said that residents in these villages can soon register for Kaveri water connection to their houses. This new pipeline connection will bring 750 MLDs of water to Bengaluru city from KRS Dam in Mandya district. The chairman pointed out that there are illegal water connections in the city which need to be regularized so that the board earns income. And now moving on to Hyderabad, Chief Minister A. Revanth Reddy has directed officials to establish a special corporation, if necessary, to mobilize funds to waive off crop loans up to 2 lakh rupees by August 15. He held a meeting with officials regarding the farmers' loan waiver scheme and paddy procurement at the State Secretariat yesterday. The Chief Minister decided to waive off farm loans by August 15. Officials were instructed to make necessary arrangements to implement the loan waiver scheme. So, Naeem, this was the buzz that I had from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी दिल्ली में बात करें तो दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपनी स्वीप पहल के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिल्ली हाट में वोटर मेले का आयोजन किया. इस दौरान नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पतंगों पर स्लोगन राइटिंग और मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी गतिविधियां की गई. इसके अलावा रिठाला स्थित JIMS कॉलेज और बादली स्थित ITI संस्थान में छात्रों को मतदान प्रक्रिया से अवगत कराया गया. दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी राजधानी के मटियाला क्षेत्र के पार्क में सुबह सैर के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जिसमें लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में औषधि अनुसंधान नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बोल्टन औषधि संस्थान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस समझौता ज्ञापन पर दोनों संस्थानों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए हस्ताक्षर किए गए. एम्स ने यह भी बताया कि इस साझेदारी से कर्मचारी तथा विद्यार्थियों के आदान प्रदान, शैक्षणिक सम्मेलन तथा सहयोग डिग्री कार्यक्रम जैसी विभिन्न पहल की जा सकेंगी. इस समझौते का अभिवादन करते हुए एम्स के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा विश्व के साथ विशेषज्ञता को साझा करने में संस्थानों के लिए सहायक होगा. दिल्ली पुलिस ने नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राजधानी में से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की है. ये प्रतियोगिता 15 जून तक चलेगी जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं. प्रतिभागियों को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को दिल्ली के दरियागंज स्थित अपराध शाखा के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के पते पर भेजना होगा. इसके अलावा NCORD 2022@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भी पेंटिंग्स को भेजा जा सकता है. बढ़ते हैं अब मुंबई की तरफ. मुंबई में बिलबोर्ड गिरने की घटना के बाद जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, मुंबई नागरिक निकाय ने बुधवार को मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे प्रशासन को अपनी जमीन पर लगाए गए बड़े होर्डिंग्स को हटाने का नोटिस जारी किया है. विज्ञप्ति में बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा कि 40x40 फीट आकार से ऊपर के होर्डिंग्स को हटाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2)(v) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। मुंबई की भौगोलिक स्थिति, तटीय क्षेत्र, इसके मौसम और हवा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नागरिक निकाय ने 40x40 फीट से बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। बीएमसी पूरे मुंबई में अवैध और खतरनाक होर्डिंग्स को हटाने के लिए अभियान चला रही है। नगर निकाय ने दावा किया है कि उसने युद्ध स्तर पर अवैध होर्डिंग्स को हटाने का अभियान चलाया है और घाटकोपर में जीआरपी की जमीन पर शेष 3 होर्डिंग्स को हटाना शुरू कर दिया है। ये भी दावा किया गया है कि होर्डिंग्स अनुमति प्राप्त किए बिना लगाए गए थे। बीएमसी ने कहा कि हवा के तेज वेग के कारण 3 होर्डिंग्स को तोड़ने की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। हालांकि नगर निकाय ने कहा कि 2 होर्डिंग्स गुरुवार रात को हटा दिए जाएंगे। मुंबई कोस्टल रोड के बो स्ट्रिंग ब्रिज का दूसरा और अंतिम गर्डर बुधवार सुबह बृहन मुंबई नगर निगम ने लॉन्च किया। बीएमसी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब गर्डर लॉन्च करने के साथ वाहनों की आवाजाही शुरू होने पर बांद्रा वर्ली सी लिंक कोस्टल रोड से सीधे पहुंचा जा सकेगा। इसमें बताया गया है कि गर्डर उत्तर की ओर मरीन ड्राइव से बीडब्ल्यूएसएल यातायात को पूरा करेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मेहराब के आकार के गर्डर का वजन लगभग 2000 मीट्रिक टन है और ये 136 मीटर लंबा है। इसमें कहा गया है कि गर्डर एक पूर्व निर्मित संरचना है जिसे हरियाणा में निर्मित किया गया था और इसे वर्ली से 65 किलोमीटर दूर रायगढ़ में नुहाना शेवा बंदरगाह पर ले जाया गया था, जहां इसे इकट्ठा किया गया था। इससे पहले पहला गर्डर 26 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और अधिकारियों ने कहा कि अब दोनों गर्डर लॉन्च होने के साथ वाटरप्रूफिंग और कंक्रीटिंग का काम चल रहा है, जिसके बाद डामर की सड़कें बनाई जाएंगी। काम पूरा होने में अभी 1 माह और लगेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 में पहली बार 85 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग टीम के माध्यम से घर पर ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। मुंबई शहर जिले के दोनों लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग शुरू हो गई है और अब तक 543 वरिष्ठ नागरिकों और 9 विकलांग मतदाताओं ने होम वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय यादव ने बताया कि मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के 233 वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया और घर से मतदान किया। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 14 मई से सदन में मतदान शुरू हो गया है। श्री यादव ने बताया कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र के अनुसार 2 टीम नियुक्त की है। उक्त टीमें मतदाताओं के घर जाकर उनके वोट दर्ज कर रही हैं। मुंबई दक्षिण मध्य विधानसभा क्षेत्र में 310 वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं और 9 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाते हुए डाक मतपत्रों के माध्यम से घर से मतदान किया। और एक खबर कोलकाता से, इस साल जून में पश्चिम बंगाल की सभी उचित मूल्य की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन लगाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य विभाग ने इस संबंध में आदेश दिया है। इन उचित मूल्य की दुकानों में चावल और गेहूं के वितरण में निष्पक्षता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सुनवाई गुरुवार को होगी। और अब प्रमुख महानगरों की खबरों के बाद प्रमुख महानगरों के मौसम के बारे में भी बात कर लेते हैं सायरा। पहले दिल्ली का मौसम, जहां आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में गर्म हवाएं चलेंगी, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
Yes, Naima, if we talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, all these three southern cities are going to have a fairly pleasant weather because tino shaharon mein light rain ki sambhavna keh sakte hain. In Chennai, minimum temperature was 28, maximum will be 36 degrees Celsius and some light rain is expected. Bengaluru will also have one or two spells of rain or thunder showers. Temperature will hover between 23 and 33 degrees Celsius and there's a possibility of a dust storm or thunderstorm in Hyderabad. The The temperature in Hyderabad will hover between 24 and 37 degrees Celsius. तो कह सकते हैं कि 40 डिग्री से तो नीचे ही है टेम्परेचर्स, तो काफी अच्छा वेदर है. प्रॉब्ली दिस विल लीड टू द मॉनसून सून इन साउदर्न इंडिया.
बिल्कुल. और आज 16 मई है तो उसके इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं से ये बात साझा कर लेते हैं कि आज सिक्किम दिवस है. सिक्किम दिवस जो है उसकी सिक्किम की स्थापना 16 मई को की गई थी, उसी की याद में मनाया जाता है. सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था. 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद यह भारत में विलीन हो गया. इस जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अंत और भारतीय संविधान के नियम प्रणाली के अंतर्गत यहां प्रजातंत्र का उदय हुआ था. तो ये तो सिक्किम दिवस के बारे में हमने बात की, और अब 16 मई के बारे में बाकायदा बात कर लेते हैं कौन से सन में क्या खास हुआ.
Yes, let's take back our listeners to the year 1918 when the first regular airmail route in the United States opened between New York City and Washington D.C.
1920 में 16 मई को ही फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी सेनापति जॉन ऑफ आर्क को संत की उपाधि दी गई थी.
एंड नईम, आई एम श्योर दैट एवरी किड इज वेरी फॉन्ड ऑफ मिकी माउस एंड मिनी माउस, और हम लोग भी बचपन में बहुत सारी कार्टून देखते थे मिकी माउस की. एंड इट वॉज ऑन दिस डे इन द ईयर 1928 व्हेन वॉल्ट डिज़नीज़ मिकी माउस मेड हिज डेब्यू विद द प्रीमियर ऑफ द कार्टून प्लेन क्रेजी. Also on this day in 1929, the first Academy Awards were presented. And एक बहुत ही, you can say that, you know, in every woman's wardrobe, nylon stockings जरूर मिलते हैं. So, on this day in 1940, nylon stockings first went on sale to the general public. And American stores, they sold out in days.
क्या बात है.
Yes.
और 1960 में आज ही के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच इंटरनेशनल टेलिक्स सेवा की शुरुआत हुई थी.
On this day in 1975, Japanese climber Junko Tabe became the world's first woman to reach the summit of Mount Everest, which is of course the world's highest peak.
1960 में आज के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच इंटरनेशनल टैरिक्स की शुरुआत हुई थी, बात तो हमने आपको बताई ही. 1999 में दक्षेस का 2002 में होने वाला शिखर सम्मेलन थिम्पू में कराए जाने की घोषणा हुई.
And on this day in 1985, the discovery of the ozone hole was announced.
2004 में रोजर फेडरर ने हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब जीता. 2006 में हॉलीवुड की चर्चित अदाकारा ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नाओमी वॉट्स को संयुक्त राष्ट्र संस्था का राजदूत बनाया गया. और इसी दिन न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय मार्क एंजेलिस ऐसे पहले पर्वतारोही बन गए जिन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया. 2007 में आज ही के दिन निकोलस सरकोजी फ्रांस के 23वें राष्ट्रपति बने. और 2013 में 16 मई को ही अमरीकी वैज्ञानिकों को पहली बार क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल निकालने में कामयाबी हासिल हुई थी. और अब हमारे श्रोता यकीनन इंतजार कर रहे होंगे कि आज हम किन किन हस्तियों की पुण्यतिथि और जयंती के जरिए उनको याद करने वाले हैं.
Yes, so the first on this list is Fani Majumdar. Today is his death anniversary, a pioneering Indian film director who worked predominantly in Hindi cinema. He is most known for his film Street Singer, which starred K.L. Sehgal, noted for the song Babal Mora Neher Chuto Jai. He is also known for Meena Kumari classic Aarti and Unche Log in 1965.
और इसके साथ ही एक चीज और बता दें अपने श्रोताओं को कि उन्होंने सिंगापुर में भी काम किया था, जहां उन्होंने खास तौर पर मलय में हैंग टुआ 1955 में बनाई थी, जो जिसे सातवें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर के लिए नामांकित किया गया था.
ही स्टार्टेड हिज करियर इन द 1930s विद लीडिंग फिल्म डायरेक्टर पीसी बारुआ एट द न्यू थिएटर स्टूडियो ऑफ कलकत्ता दैट वाज फाउंडेड बाय बीएन सरकार. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही मेड क्लासिक्स लाइक देवदास. Then he moved to Bombay in 1941 and worked with Bombay Talkie Studio. He made Tamanna with Suraiya and Mohabbat with Shanta Apte and Andolan. He also made films in Punjabi, Magadhi and Maithili. Uche Log was actor Firoz Khan's first hit film and it won the National Film Award for second best feature film as well. So when we talk about Fani Majumdar ki itni achhi lajawab films ki, and let's listen to that famous song in K.L. Sehgal's voice, wow. Babul Mora Neher Chuto Jai.
बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए मोराए नैहर छूटो जाए चार कहार मिले मोरी डोलिया.
बहुत ही फेमस है और न सिर्फ फिल्मों में बल्कि ये हमारे भारत के जो आंचलिक हिस्से हैं उनमें भी ये गीत आज भी लोकगीत की तरह गाया जाता है.
यस एंड वेरी फ्यू पीपल वुड प्रॉब्ली नो दैट इट वाज रिटन बाय वाजिद अली शाह, क्योंकि हम अवध से आते हैं तो आई थिंक मेरा फर्ज बनता है ये पॉइंट आउट करना. यस एंड नहीं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी लेट मी जस्ट टेक आवर लिसनर्स बैक टू आवर चाइल्डहुड. सुनते हैं ये क्लिप.
हम सभी बहुत सारे क्या बहुत सारे. अच्छा बताती हूँ. सूरज एक.
And I'm sure that हर किसी के चेहरे पे मुस्कान आई होगी.
बिल्कुल आपने तो पूरी हमारे बचपन को दोबारा जीने के लिए हमें मजबूर कर दिया. सब कुछ याद आ गया कैसे टीवी के सामने हमारी आंखें चिपक जाया करती थी और इस गाने को इतना गाया है कि एक एक शब्द इसका याद है आज भी.
Absolutely. And why we played this song? Because the director of this short animated film Vijaya Mule was born today in 1921. It's her birth anniversary. Lovingly called Akka in film circles. Her close friendships with Shwetaji Ray, Louis Mal, Mrinal Sen and other film personalities gave her a unique perspective into Indian cinema and influenced her work.
उन्हें उनकी एनिमेशन फिल्मों में इस गीत के लिए तो याद किया ही जाता है जिसके जो अभी हम आप एक साथ मिलकर सुन रहे हैं. और ये भी बताते हैं कि इस गीत ने सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था. और आज ही पुण्यतिथि है कर्नल धर्मवीर सिंह की जिनकी 16 मई 2022 में निधन हुआ था. भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे. 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व और लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में छोटी सी भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी थी. 1971 की इसी युद्ध पर 1997 में बनी थी फिल्म बॉर्डर जिसका गीत अभी आप सुन रहे हैं जिसमें अभिनेता अक्षय खन्ना ने कर्नल धर्मवीर की भूमिका निभाई थी.
आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना.
Today we are also remembering Dharmesh Darshan, a filmmaker, director, writer and who predominantly works in Hindi cinema and he was born into the Bhatt family. In fact, he started his illustrious career as one of the youngest filmmakers of Indian cinema in the league of Suraj Barjatya, Aditya Chopra, Karan Johar and Sanjay Leela Bhansali.
उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत क्राइम एक्शन फिल्म लुटेरे से की थी. उन्होंने अपनी सफलता हासिल की और रोमांटिक ड्रामा राज हिंदुस्तानी के साथ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रखा. उसके बाद उन्होंने म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा धड़कन का निर्देशन किया जो एक और महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी.
तो जब राजा हिंदुस्तानी की बात करें देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग इन अलका याग्निक्स
वॉइस.
लेट्स लिसन टू इट. दिल तो चाह रहा है पूरा सुने बट टुडे वी आल्सो रिमेंबर विकी कौशल ऑन हिज बर्थडे. अ वेरी फाइन एक्टर जिन्होंने चुनिंदा फिल्म्स की हैं अभी बिकॉज अभी ही इज वेरी नेसेंट इन हिज करियर.
लेकिन इतनी छोटे से ही करियर में उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल कर लिए हैं.
सो देयर इज अ वेरी नाइस फिल्म मसान जिसमें उन्होंने एक्ट किया था एंड वी हैव दिस नंबर रिटन बाय दुष्यंत कुमार.
ताले हैं
और अब वक्त हो चुका है कि अपने श्रोताओं से अनुमति ले ली जाए, तो नईम अख्तर और सायरा मुज्तबा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी गोल्ड।
नमस्कार, नमस्कार।